الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله مولانا العظيم. یہ قرآن مجید کی آیت ابھی قاری صاحب آپ کو سنا رہے تھے. اس آیت کے اندر ایک عجیب و غریب سوال ہے اور یہ دنیا کے انسان بھی بڑے عجیب ہے. آج سے نہیں بلکہ تقریباً 1500 سال سے دنیا کے انسان آپس میں یہ پوچھ پرچھ کرتے ہیں, سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے. ہمارا ایمان, ہمارا عقیدہ قیامت کے لیے, موت کے بعد کی زندگی کے لیے ضروری ہے. جیسے ایک اللہ پر ہم ایمان رکھتے ہیں, اللہ کے سوا کسی کی ہم عبادت نہیں کرتے, جس کو ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں. کلمہ طیبہ میننگ لا الہ الا اللہ, یہ کلمہ طیبہ کہلاتا ہے کہ اللہ تعالی ہی عبادت کے لائق ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اسی طرح ہم ایمان رکھتے ہیں محمد الرسول اللہ, اللہ تعالی کے جتنے بھی نبی دنیا میں آئے, جتنے رسول دنیا میں آئے, इनके नाम हम जानते हो या न जानते हो, तमाम नबी को तमाम रसूलों को हम सच्चा मानते हैं। और इसी में ये भी मानते हैं कि हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और कयामत तक कोई नया नबी दुनिया के अंदर आने वाला नहीं है। इसी तरह हमारा तीसरा बड़ा अकीदा ये है कि इस दुनिया की जिंदगी के बाद, इस दुनिया के ख़त्म होने के बाद कयामत आने वाली है, हिसाब किताब होने वाला है, नेक काम करने वालों को जन्नत मिलने वाली है और कुफ्र शिर्क बुरे काम करने वालों को जहन्नम की आग में डाला जाएगा। ये तीन इस्लाम के बड़े बड़े अकीदे हैं, तौहीद, नबियों को मानना और कयामत के बाद की आखिरत की जिंदगी को मानना। अब ये कयामत कब आएगी उसका टाइम अल्लाह ताला ने किसी को नहीं बतलाया। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में थे तो उस वक्त मक्का के काफिर लोग, मदीना के बेईमान लोग हुजूर के पास आते थे और आकर के सवाल करते थे कि कयामत का टाइम बतलाओ, कयामत कब आएगी। बाज मरतबा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली के लोग, कुरेश खानदान के लोग आकर के यूं कहते कि मेरी और आपकी फैमिली एक है, हम एक फैमिली के लोग हैं, आप हमको तो प्राइवेट में बतला दो कि कयामत कब आने वाली है। अल्लाह ताला ने इनका क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब कुरान में नकल फरमाया, यस अलूनक अनिस्साति अय्यान मुरसाहा। ये लोग आपको सवाल करते हैं कि कयामत कब आएगी, कयामत कब आने वाली है। आज भी इंटरनेट के ऊपर हजारों लोग मौजूद हैं जो रात दिन एक ही काम करते हैं, कयामत कब आएगी, दज्जाल कब निकलेगा, और दज्जाल निकल गया, कहाँ पर दज्जाल है, एक ही काम में वो रात दिन लगे रहते हैं। तो वो मक्का वालों ने भी यही सवाल किया, यस अलूनक अनिस्साति अय्यान मुरसाहा, कयामत कब आएगी बतलाओ। तो एक बहुत अच्छा किस्सा है हदीस में कि एक सहाबी आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल किया कि कयामत कब आएगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अच्छी स्टाइल में जवाब दिया। हुजूर ने फरमाया कि तुमने कयामत के लिए तैयारी क्या की है वो बतलाओ। कितना अच्छा जवाब दिया कि तुम कयामत का टाइम पूछने आए कि कयामत कब है, तो बताओ कि तुमने कयामत के लिए क्या तैयारी की है। तो सहाबी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, वो कहने लगे कि मैंने कोई तैयारी नहीं की है, बस इतनी बात है कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत रखता हूँ, मैं अल्लाह से मोहब्बत रखता हूँ और मैं अल्लाह के रसूल से मोहब्बत रखता हूँ। तो उस पर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दुनिया में तुम जिसके साथ मोहब्बत रखोगे, मौत के बाद आखिरत में अल्लाह ताला तुमको उसके साथ रखेंगे। इसलिए हम सब ईमान वालों को अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के नबी से मोहब्बत, ये अपने दिल के अंदर पक्का कर लेना चाहिए, जमा लेना चाहिए। अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत होगी तो फिर मौत के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमको जन्नत दे देंगे, जहन्नम की आग से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमा लेंगे। तो अगर हम देखने जावे तो जिस जमाने में हम लोग चल रहे हैं, ये जमाना लगता ऐसा है कि अब कयामत ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक है कयामत का जमाना। आपने मगरिब की नमाज के अंदर दूसरी रकात में सुना, पूरा कयामत का मंजर अल्लाह ताला ने खींचा, इदा ज़ुलज़िलतिल अर्ध ज़िलज़ालहा, ये जमीन में बहुत बड़े बड़े अर्थक्विक आएंगे, जलजले आएंगे, धरती कंप आएंगे जमीन के ऊपर, और एक बहुत बड़ा धरती कंप आने वाला है, अर्थक्विक आने वाला है, और इतना भारी वो धरती कंप होगा कि वह अखरजतिल अर्द अस्कालहा, जमीन के अंदर जितनी चीजें हैं वो बाहर आ जाएगी। जमीन को जब से अल्लाह ताला ने बनाया उसमें गोल्ड अल्लाह ने रखा, सिल्वर रखा, इसके अंदर अल्लाह ताला ने लिग्नाइट रखा, कोयला रखा, इसके अंदर जो है अजीब अजीब चीजें रखी, डायमंड रखे, पेट्रोल रखा, क्रूड ऑयल रखा, और प्लेटिनम रखा, यूरेनियम रखा, ऐसी अजीब अजीब चीजें अल्लाह ने जमीन में भरी हुई है। और जैसे जैसे दुनिया कयामत के करीब जा रही है ये सब चीजें अब निकल रही है। आज से 150 साल पहले पेट्रोल डीजल कौन जानता था, जमाना दुनिया का आखिरी आखिरी शुरू हुआ, पेट्रोल डीजल दुनिया के अंदर आ गया। प्लेटिनम को कौन जानता था, यूरेनियम को कौन जानता था। जैसे जैसे जमाना कयामत के करीब जा रहा है अंदर से सारी चीजें निकल रही है। और ये कुरान ने फरमाया, वह अखराजतिल अर्द अस्कालहा, जमीन के अंदर जो कुछ है सब बाहर आ जाएगा। बल्कि एक अजीब हदीस सुनो, कयामत से पहले दुनिया के अंदर जमीन में से गोल्ड सिल्वर के बड़े बड़े टुकड़े निकलेंगे, बड़े बड़े टुकड़े, जैसे रास्ते के ऊपर आप बड़े बड़े पत्थर देखते हो, ऐसा बड़ा बड़ा सोना चांदी कोई लेने वाला नहीं होगा। रिवायतों में आता है कि आदमी रास्ते में चल करके निकलेगा तो पैर में ठोकर लगेगी, जैसे आजकल पत्थर की ठोकर लगती है। कयामत से पहले एक जमाना आएगा कि ठोकर लगेगी तो आदमी नीचे देखेगा, कैसे मेरा पैर लगा, ठोकर खा गया, ओह ये तो सोना है, ये तो चांदी है, कोई लेने वाला नहीं। तो फिर आदमी ये कहेगा, यही गोल्ड और सिल्वर है कि हमसे पहले जो लोग दुनिया में थे वो इसके लिए लड़ मर के दुनिया से चले गए, वो अफसोस करेंगे कि आज इस सोने और चांदी को लेने वाला कोई नहीं है, हाथ लगाने वाला कोई नहीं है। पहले लोग यानी आज हमारे जमाने के लोग कि गोल्ड और सिल्वर की वजह से लड़ते हैं, मरते हैं, मारते हैं, मर्डर करते हैं, शूट करते हैं सोने चांदी के वास्ते। और हदीस में ये बात मौजूद है कि एक जमाना आएगा कि कोई उसको लेने वाला नहीं होगा। और सुनो, आगे की बात सुनाऊं। हदीस में हजरत नबी करीम صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ آخری زمانے میں جب حضرت مہدی ڈکلیئر ہوں گے، ظاہر ہوں گے، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت مہدی، جن کو لوگ امام مہدی بھی کہتے ہیں، وہ ڈکلیئر ہوں گے، ظاہر ہوں گے، تو وہ زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا میں لوگوں کو خوب مال دولت مل جائے گی. اتنا مال دولت ملے گا کہ آپ زکوٰۃ صدقہ نکالو گے تو اپنی زکوٰۃ حساب کر کے نکال کے دینے کے لیے نکلو گے کہ کوئی غریب مل جاوے، کوئی چندہ لینے والا مل جاوے تو میں اس کو زکوٰۃ صدقے کی رقم دے دوں. لیکن آدمی اپنی زکوٰۃ کی رقم لے کے نکلے گا، گھر گھر جائے گا، جس کے یہاں بھی جائے گا وہ کہے گا کہ بھائی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے زکوٰۃ نہیں چاہیے، مجھے صدقہ نہیں چاہیے، جاؤ آگے جاؤ. وہ آدمی تھک کے آخر میں واپس اپنے گھر پر آ کے بیٹھ جائے گا. ایسا زمانہ آنے والا ہے. یہ اللہ کے نبی کی مبارک بات ہے جس کے اوپر ہمارا ایمان ہے. اس لیے میں آج کے زمانے میں مسلمان بھائیوں کو کہا کرتا ہوں، بھائیوں یہ غریب لوگ ہمارے پاس لینے کے لیے آتے ہیں، مدرسے والے ہمارے پاس چندہ لینے کے لیے آتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، ان لینے کے لیے آنے والوں کا شکریہ ادا کرو اور ان کو جو ہے مال دے دو. ورنہ ایک زمانہ آئے گا کہ کوئی زکوٰۃ صدقہ لینے والا دنیا میں باقی نہیں رہے گا. آپ نے قاری صاحب کی قرات میں ابھی سنا سورہ والضحیٰ کو، والضحیٰ کی سورت بار بار پڑھتے ہو، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. کوئی سوال کرنے کے لیے آوے تو اس کو بھگاؤ مت، اس کا انسلٹ مت کرو، اس کو ڈانٹ کے نکال مت دو، اس کو دو جو ہو سکے اپنی کیپیسٹی میں وہ دو، اور اگر نہیں دینا ہے تو دو میٹھی بات کہہ کر دعا دے کر کے روانہ کر دو، لیکن اس کو غلط بات مت کہو، اس کا انسل مت کرو، اس کو بیکورڈ نیچا مت سمجھو. یہ اللہ قرآن میں فرما رہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور ساتھ ساتھ میں یتیموں کی خدمت کرنے کے لیے فرمایا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. کوئی یتیم ہو تو یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یتیم پر ظلم مت کرو، یتیم کو کھلاؤ، یتیموں کی خدمت کرو، اور سوال کرنے کے لیے آنے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. یہ حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے. تو یہ دنیا اب آگے بڑھ رہی ہے، قیامت کی طرف آگے بڑھ رہی ہے. حدیث شریف کے اندر فرمایا کہ قیامت سے پہلے پہلے ایک بڑی نشانی یہ ہوگی کہ محمد ابن عبداللہ المہدی دنیا کے اندر ظاہر ہوں گے. یہ عجیب اللہ کے نیک بندے ہوں گے، ولی ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے محمد، وہ اللہ کے ولی کا نام بھی محمد ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا جو نام ہے عبداللہ، ان کا نام بھی سیم ٹو سیم عبداللہ ہوگا، محمد ابن عبداللہ. اور وہ مدینہ پاک میں پیدا ہوئے ہوں گے اور 40 سال کی عمر ہوگی تو بھاگ کر کے مکہ المکرمہ آئیں گے مدینہ سے، اور کعبہ شریف کے سامنے جہاں حجر اسود ہے، جہاں سے ہم طواف شروع کرتے ہیں، اور مقام ابراہیم ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے اسکیچیس والا پتھر ہے، وہ مقام ابراہیم، اس کے بیچ والی جو جگہ ہے وہاں لوگ ان کو پہچان لیں گے کہ یہ رہے اللہ کے نیک بندے، آخری زمانے میں امت کے ورلڈ وائڈ لیڈر حضرت محمد ابن عبداللہ المہدی اور ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کرنا شروع کریں گے. دنیا میں حجر اسود یہ جنتی پتھر ہے, مقام ابراہیم یہ بھی جنتی پتھر ہے, دونوں جنت سے لائے گئے. ان دونوں کے بیچ والی جو جگہ ہے کعبہ کے دروازے کے سامنے والی, اس جگہ پر لوگ ان کو پہچان لیں گے. اور زمانے کے 313 پولیٹی ایمان والے مسلمان سب سے پہلے ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے. یہ حضرت امام مہدی ظاہر ہوں گے. ان کے آنے کے بعد دجال آئے گا, دنیا کے اندر ظاہر ہوگا. دھیان سے سن لو کہ دجال پیدا ہو چکا ہے, ایسا نہیں کہ دجال پیدا ہوگا, دجال پیدا ہو چکا ہے. اور دجال بھی ایک انسان ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت لمبی عمر عطا فرمائی ہے, بہت لمبی طاقت عطا فرمائی ہے, اور اس کی عمر کم از کم 1500 برس تو ہو چکی ہے. اس لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تھے اس زمانے میں ایک صحابی نے دجال سے ملاقات کی تھی, حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو پہلے کرسچن تھے عیسائی تھے. وہ ایک مرتبہ اسٹیمر میں بیٹھ کر کے جا رہے تھے اور ان کی اسٹیمر سائیکلون میں آ گئی, طوفان میں آ گئی, اور ادھر 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 ایک مہینے تک دریا میں وہ چکر مارتے رہے. حضرت تمیم داری اور ان کے سب دوست لوگ اور ان کی بوٹ ادھر ادھر ایک مہینے گھومتی رہی. اس کے بعد ایک آئرلینڈ کے اوپر پہنچی, کون سا آئرلینڈ ان کو بھی معلوم نہیں. شام کے وقت پر ایک آئرلینڈ کے اوپر پہنچی, تو اس آئرلینڈ کے اوپر حضرت تمیم داری جب پہنچے تو وہاں پر دجال سے ان کی ملاقات ہوئی. انہوں نے دجال کے ساتھ ملاقات کی, سوال جواب ہوئے, اور اس کے بعد تمیم داری واپس آئے اور اسلام قبول کیا, اور مدینہ آ کر کے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کے ساتھ ملاقات جو ہوئی اس کی پوری ڈیٹیل بتلائی انہوں نے, اور حضور نے مسجد نبوی شریف کے منبر پر آ کر کے پورے مدینہ والوں کو جمع کر کے وہ ڈیٹیل بیان کی. اس لیے وہ حدیث بن گئی, اور مسلم شریف جو حدیث کی کتاب ہے اس میں وہ پورا قصہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم داری اور دجال کی ملاقات کی پوری تفصیل بتلائی. تو حضور کے زمانے میں دجال موجود تھا, لیکن کسی آئرلینڈ کے اوپر فرشتوں نے اس کو باندھ کر کے رکھا. حضرت تمیم داری نے بھی جب ملاقات کی تو دیکھا حضرت تمیم نے کہ ایک بہت بڑی عمارت ہے, بلڈنگ ہے اس آئرلینڈ کے اوپر, اور وہاں ہاتھ اور پیر باندھے ہوئے تھے اور وہ کود رہا تھا اوپر نیچے نیچے اوپر, اور دجال بڑے خطرناک شکل کے اندر تھا. تو کسی آئرلینڈ پر حضور کے زمانے میں تھا, تو معلوم ہوا کہ حضور کے زمانے میں دجال موجود تھا, پیدا ہو چکا تھا, دنیا میں کسی جگہ فرشتوں نے اس کو قید کر کے رکھا تھا. آج بھی دنیا میں کسی آئرلینڈ کے اوپر موجود ہے, ہمیں نہیں معلوم کہاں پر موجود ہے. لیکن حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہر ہونے کے بعد دنیا میں دجال ڈکلیئر ہوگا, ظاہر ہوگا, اور وہ پوری دنیا کے اندر چکر لگائے گا, اور بڑا خطرناک انسان ہوگا. یہ دجال کو اللہ تعالیٰ نے عجیب عجیب چیز عطا فرمائی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ اللہ نے دیا، ایسا استدراج اللہ نے دجال کو بھی عطا فرمایا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ ان کا چمتکار معجزہ یہ تھا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ قرآن میں، قبر پر جاتے تھے اور مردے کو زندہ کر دیتے تھے. اسی طرح دجال کو بھی اللہ تعالیٰ بطور استدراج یہ قوت دیں گے کہ وہ دنیا میں آ کر ایمان والے کو کاٹ ڈالے گا، دو ٹکڑے کر ڈالے گا، اور دونوں ٹکڑے دور دور پھینک دے گا اور بیچ میں چلے گا، لوگوں کو کہے گا کہ دیکھو میں نے ایمان والے کے دو ٹکڑے کر ڈالے. اس کے بعد وہ دونوں ٹکڑے جوائنٹ کرے گا اور اس کو زندہ کرے گا. ایسے ایسے کرا چمتکار دجال دکھائے گا دنیا کے اندر آنے کے بعد، اور لوگوں کو سوال کرے گا، اے لوگوں میں نے اس آدمی کو مار ڈالا، پھر میں نے زندہ کر دیا، بتاؤ میں خدا ہوں کہ نہیں ہوں؟ وہ لوگوں کو سوال کرے گا کہ میں خدا ہوں، مجھے مان لو. تو ایمان والے یہ کہیں گے کہ ہم نے تیرا یہ چمتکار دیکھا، اب ہمیں پکا یقین ہو گیا کہ تو ہی جھوٹا دجال ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے ہم کو بتلا دیا تھا کہ دجال ایسا ایسا کر کے دکھائے گا، انسان کو مارے گا، دو ٹکڑے کرے گا، جوائنٹ کرے گا، ہمارے نبی نے کہا تھا. اس لیے ہم مان لیتے ہیں کہ تو سچا جو ہے خدا ہو ہی نہیں سکتا، تو جھوٹا دجال ہے، بناوٹی انسان ہے، ایمان والے کہیں گے. تو حضرت مہدی کے بعد دنیا میں دجال ظاہر ہوگا. اس موقع پر میں رک کے آپ کو بتلاؤں، دجال ایک چمتکار تو یہ دکھائے گا، مارے گا، زندہ کرے گا، زندہ کرے گا، مارے گا. دوسری ایک بات میں آپ کو بتلاؤں، دجال کے پاس جنت بھی ہوگی، دجال کے پاس جہنم بھی ہوگی، وہ ساتھ لے کے چلے گا. لیکن جو اوپر سے جنت دکھتی ہوگی وہ اندر جانے کے بعد آگ ہوگی، اور جو اوپر سے جہنم دکھتی ہوگی وہ اندر جانے کے بعد بہترین باغیچہ ہوگا. وہ جو لوگ دجال پر ایمان لائیں گے، دجال کو خدا مانیں گے، تو دجال اس کو اپنی جنت میں داخل کرے گا، لیکن وہ حقیقت میں آگ ہوگی. اور جو لوگ دجال کو نہیں مانیں گے، جیسے کہ ایمان والے دجال کو نہیں مانیں گے، اس کو دجال اپنی جہنم میں ڈالے گا، لیکن وہ جہنم حقیقت میں باغیچہ ہوگا، یہ لے کر چلے گا اور عجیب عجیب کرتب دکھائے گا. اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں، یہ جو آج سائنس، ٹیکنالوجی، عجیب عجیب چیز دنیا کے سامنے آ رہی ہے، اس سے امپریس مت ہو جاؤ، اس سے متاثر مت ہو جاؤ، یہ سب دجالی چیزیں ہیں. ایمان والے ایسی چیزوں سے امپریس نہیں ہوتے، متاثر نہیں ہوتے. ایمان والا تو کیا کہتا ہے، لا قوت الا باللہ، ساری طاقت اللہ کی ہے، ساری قدرت اللہ تعالی کی ہے. ہم سائنس، ٹیکنالوجی، یہ اس کی قدرت اور طاقت کو نہیں مانتے، یہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، اللہ کی قدرت سے ہوا کرتا ہے. اسی لیے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر یقین رکھیں. اور دیکھیے، دجال کی دونوں آنکھ خراب ہیں، ایسے اس کو کہا گیا اعور کانا دجال، لیکن حقیقت میں دونوں آنکھ خراب ہیں. ایک آنکھ سے تو بالکل دکھتا نہیں ہے اور دوسری آنکھ باہر نکلی ہوئی ہے، جیسے کہ گریپس آپ نے دیکھی بڑی بڑی، اور اس کا پورا جھمکا ہوتا ہے، اس میں سے ایک گریپس، ایک انگور باہر نکلی ہو تو کیسی لگتی ہے، ایسے دجال کی آنکھ باہر نکلی ہوئی ہوگی، اتنا ڈینجر وہ دکھتا ہوگا. اور دوسری آنکھ کی جگہ پر سپاٹ ہوگا، और उसमें छोटा सा हॉल जैसा होगा ऐसा, दोनों आंख उसकी खराब होगी। और यहां पेशानी पे लिखा होगा काफ फा रा, तख्ती बचपन की काम आएगी, काफ फा रा मीनिंग काफिर, हर एक मुसलमान पढ़ेगा इसकी पेशानी को, ये काफिर है, ये दज्जाल है, हम इसको नहीं मानते, पढ़ेगा हर मोमिन। हदीस में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल तुम्हारे सामने आ जाए तो सूरतुल कहफ की पहली या आखिरी 10 आयत पढ़ लो तो दज्जाल के फितने से अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेंगे। ये हुजूर ने इलाज बतला दिया। मैं आजकल सब जगह मुसलमानों को ये अपील करना चाहता हूं, हर मुसलमान रोजाना सूरतुल कहफ की पहली 10 आयत या आखिरी 10 आयत पढ़ लेवे तो अल्लाह ताला दज्जाल और दज्जाली फितनों से हमारी हिफाजत फरमाएंगे। आप सब नियत करो कि सूरतुल काब की पहली या आखिरी 10 आयतें रोजाना पढ़ने की आदत बनाओ, कहो इंशाअल्लाह अल्लाह उसकी बरकत से दज्जाल के फितने से भी हिफाजत करेंगे और दज्जाली फितनों से भी अल्लाह ताला बचा बचा करके रखेंगे। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतर करके दुनिया में तशरीफ लाएंगे। तो जैसे जैसे ये दुनिया आगे बढ़ रही है, कयामत नजदीक आ रही है, कयामत करीब आ रही है और ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आकर के दज्जाल को कत्ल करेंगे। लुद एक सिटी का नाम है, उस लुद सिटी के दरवाजे के ऊपर बाबुल लुद हदीस में आया है। मैंने देखी है वो जगह अल्हम्दुलिल्लाह, लुद शहर भी मैंने देखा है और लुद सिटी का गेट भी मैंने देखा है जहां पर हजरत ईसा अलैहि सलाम दज्जाल को कत्ल करने वाले, वो जगह भी मैंने देखी है। तो वहां पर हजरत ईसा अलैहि सलाम अल्लाह के नबी दज्जाल को अपने हाथ से कत्ल करेंगे और खत्म करेंगे और फिर हजरत ईसा अलैहि सलातु वस्सलाम के बाद दुनिया में हजरत ईसा अलैहि सलाम की जिंदगी के आखिरी जमाने में याजूज माजूज का फितना दुनिया में आएगा। फिर एक जानवर निकलेगा सफा पहाड़ से, अल्लाह मुझे आपको मक्का मदीना उमरे के लिए बार बार ले जावे, वो जाने की जगह है सफा पहाड़ से हम उमरा शुरू करते। इन सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, कहते हैं कि सफा पहाड़ के अंदर वो जानवर है, अंदर सफा पहाड़ में, और कयामत से पहले वो सफा पहाड़ फटेगा और अंदर से जानवर निकलेगा और वो अजीब किस्म का जानवर होगा, लोगों से बात करता होगा। कुरान में मौजूद है, इस पर ईमान लाना जरूरी है। अखरजना लहुम दाबतम मिनल अर्द तुकल्लिमुहुम अन्नन्नास कानू बिआयातिना ला यूकिनून, एक जानवर निकलेगा और सफा पहाड़ से निकलना आसार से साबित है और वो लोगों से इंसानों से बात करेगा। अब आजकल ऐसे बर्ड आते हैं ना, लोग घरों में भी पालते हैं कि जो बात करता है लोगों से, सलाम भी करता है, कुरान की आयत भी पढ़ता है, वेलकम भी कहता है, कैमछो भी पूछता है, ऐसे ऐसे बर्ड अब आ गए। ये कयामत करीब होने की निशानी है कि वो जानवर जिसका तस्किरा कुरान में है उसका नमूना अल्लाह ताला हमें दिखलाते हैं कि जब आज एक परिंदा बोल सकता है, एक बर्ड बोल सकता है, इंसानों के साथ बात करता है, तो फिर वो जानवर कयामत से पहले अल्लाह ताला सफा पहाड़ से निकालेंगे और वो लोगों से बातचीत करेगा। तो अब जमाना आगे बढ़ रहा है कयामत की तरफ और बड़े खतरनाक फितने दुनिया के अंदर जाहिर हो रहे हैं। हदीस में आता है अल्लाह ऐसे बुरे दिन से हमारी हिफाजत फरमाए, बुरी आदत से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए का क्या हाल होगा। मैं आपको हदीस की दो तीन बातें सुनाता हूँ, खुद आप डिसीजन ले लो कि कयामत कितनी करीब है। का ऐसा जमाना आएगा कि बर सदीक हो व जफा अबा हो कि लोग अपने दोस्तों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, फ्रेंड सर्कल के साथ पार्टियां करेंगे, मौज मजे करेंगे, खुशी खुशी मिलेंगे और अच्छी अच्छी बातें करेंगे और अपने बाप के ऊपर जुल्म करेंगे। बर्र सदी कहो व जफा अबाहो, लोगों का हाल ऐसा होगा दोस्त बहुत अच्छा लगेगा और बाप के ऊपर लोग जुल्म करेंगे, बाप को साइड पर कर देंगे। आज ऐसा जमाना दुनिया में आ गया, बाप कभी हफ्ते में मिले तो बहुत शुक्रिया, महीने में मिले दो बात अच्छी की, बेचारे माँ बाप घर में ऐसे ही पड़े रहते हैं, कोई उनका पूछने वाला नहीं होता। माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो, ये कयामत की निशानी में से। आगे हदीस में यूं फरमाया कि लोगों का हाल ये हो जाएगा कि अपनी बीवी की बात को मानेंगे और माँ की नाफरमानी करेंगे, औरत की बात मानेंगे, मेरी बीवी जो कहे वो फाइनल, और माँ तो डोसी हो जाएगी, माँ को लोग कहेंगे कि बुढ़ी चुप बैठ, तेरी अक्कल मर गई है। ऐसा जमाना आएगा, ये हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बीवी की बात लोग मानेंगे और माँ की नाफरमानी करेंगे। मुसलमानों ऐसी हालत से अपने आप को बचाओ, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, माँ बाप की खिदमत करो, जन्नत कमा लो। अल्लाह ताला ने कुरान में अपनी इबादत के साथ माँ बाप की इताअत का हुक्म दिया कि अल्लाह की इबादत करो और माँ बाप की बात मानो, माँ बाप की खिदमत करो, ये सुलूक करना चाहिए, अच्छा बर्ताव माँ बाप के साथ करना चाहिए। और ये भी है कि दुनिया के अंदर शराब आम हो जाएगी, नशे वाली चीजें आम हो जाएगी। आप दुनिया के अंदर देखो ड्रग्स किस्म किस्म का आम हो रहा, अजीब अजीब किस्म की शराब ड्रग्स अलग अलग शक्ल के अंदर आम हो रही, हालांकि हराम है। शराब ड्रग्स मुसलमान के लिए हराम है, गुनाह की चीजों में से है, लेकिन कयामत से पहले के जमाने में ये चीज आम हो जाएगी। ईमान वालों, हमारी जो लोग शराब में ड्रग्स में पड़े हुए उनको समझाओ, उनको समझा करके तोबा कराओ, इसमें ईमान की भी बर्बादी है, इसमें आमाल की भी बर्बादी है और साथ में पैसे भी तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिजसु मिन अमलिश शैतान फजतनिबू। इन्नमल खम्र, ये शराब, ये वाइन, ये ड्रग्स, ये मुसलमान के लिए अल्लाह ने हराम किया है। आयत में दूसरे नंबर पर फरमाया इन्नमल खम्रु वल मैसिर, जुगार खेलना, ये जुगार भी हराम है। आज मुसलमान लोग जुगार खेलते हैं, पैसे जुगार में लगाते हैं, हराम काम में दौलत लगाते हैं। याद रखो, जुगार खेल करके कभी कोई कामयाब नहीं हो सकता, हर एक उजड़ता ही है, बर्बाद होता है। ये जुगार हराम काम, गलत काम, ये पैसों की बर्बादी है। इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिजसु मिन अमलिश शैतान, ये शैतानी काम है। फजतनिबू, उससे अपने आप को बचाओ और रुक जाओ, दूर हो जाओ। तो जैसे जैसे दुनिया कयामत के करीब जा रही है, ये सारी बुराइयां बढ़ रही है, लेकिन हम ईमान वाले, एक अल्लाह पर ईमान रखने वाले, हम लोग ऐसी बुरी चीजों से अपने आप को बचावे, अपने आप को दूर रखे। ईमान वालों को अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के रसूल का हुक्म, कुरान की बात, दीन की बात, उसके ऊपर जम करके ईमान वाला रह रहे। तो ये कयामत से पहले का जमाना, कितनी प्यारी बात अल्लाह ने फरमाई, यस अलो नकानिसाअति अय्यान मुरसाहा फीम अंत मिन ज़िक्राहा इला रब्बिका मुंतहाहा इन्नमा अंत मुंज़िरु मन यख्शाहा कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यलबसू इल्ला अशियतन औ दुहाहा। भाइयों, मौत के बाद जो आखिरत की जिंदगी आने वाली है, उस जिंदगी में जब जाएंगे तो दुनिया तो आधे दिन जैसी मालूम होगी, आधे दिन की दुनिया, हाफ डे, मिड डे, ऐसी दुनिया लगेगी, इतनी लंबी आखिरत है। कयामत के बाद की जिंदगी इतनी लंबी है, इसलिए अपनी दुनिया को बर्बाद मत करो। अपनी दुनिया अल्लाह की रजा के मुताबिक, अल्लाह की खुशनुदी के मुताबिक गुजारो। हारी साहब ने किरात में एक आयत पढ़ी थी, कितनी अच्छी बात अल्लाह ताला ने फरमाई, वह अम्मा मन खाफ मकाम रब्बी व नह नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा, कि जो आदमी अल्लाह के सामने खड़े होने से डरता है कि एक दिन मुझे अल्लाह के सामने खड़ा होना है, अल्लाह के सामने जाकर के हिसाब देना है, और अपने आप को मनमानी जिंदगी से बचा करके रखता है, ऐसे आदमी को अल्लाह जन्नत अता फरमाएंगे। हमें मनमानी जिंदगी नहीं गुजारनी, अल्लाह की मर्जी वाली जिंदगी गुजारनी, जिससे अल्लाह राजी हो जाए, जिससे अल्लाह खुश हो जाए, ऐसी जिंदगी हमें गुजारनी। व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बी व नह नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। आज दुनिया का एक बहुत बड़ा फितना है जिसको लोग फ्री लाइफ कहते हैं, और ऐसी फ्री लाइफ मेंटालिटी वालों की एक वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन है जिसको फ्री मेशन कहा जाता है। फ्री मेशन, फ्री लाइफ, ये लोग क्या कहते हैं, भाई अल्लाह की बात, रसूल की बात कुछ नहीं, जो अपनी मर्जी में आया, जो अपने मन में आया, आजाद जिंदगी गुजारो। ये है आजाद जिंदगी गुजारने वाले, ये है व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बी व नह नफ्स अनिल हवा। ये हवा, हवा यानी मनमानी जिंदगी वाले, फ्री लाइफ वाले। जो आदमी फ्री लाइफ की बात करता है, फ्री लाइफ नथिंग बट फ्रीज लाइफ, उनकी जिंदगी फ्रीज हो जाती है, किसी काम की बाकी नहीं रहती। हम मुसलमान एक अल्लाह की बात मान करके जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह के रसूल की बात मान के जिंदगी गुजारते हैं, हम मनमानी जिंदगी गुजारते नहीं है। तो ये बात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर हमारे सामने बयान फरमा दी। मेरे ईमान वाले भाइयों, बहुत नाजुक जमाना है, बहुत नाजुक जमाना। आज का जमाना कैसा है कि ईमान को संभालना ये सबसे बड़ी हमारी फिक्र है। हमारा ईमान बच जाए, हमारी नेक्स्ट जनरेशन, हमारी औलाद, हमारे बच्चों का ईमान बच जाए, इसकी फिक्र हम लोगों को करनी है। इसके लिए आज के जमाने में अल्लाह ताला ने तीन मुबारक सिलसिले चालू किए, तीन मुबारक काम चले हैं। तीनों के साथ खुद भी जुड़ जाओ, अपने बच्चों को जोड़ दो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत करेंगे। पहला मुबारक सिलसिला है मकतब और मदरसा। हमारे तमाम बच्चे मकतब पढ़े, मदरसा पढ़े, वहां दीन की तालीम लेवे, ये पहला काम करना है। और दूसरा काम दावत व तबलीग की मुबारक नूरानी मेहनत जो अल्लाह ताला ने इस जमाने में चलाई, उसके साथ हम अपने आप को जोड़ लेवे। तीसरा काम अल्लाह के नेक बंदे उलमाए किराम, औलियाए किराम, सालिहीन, अल्लाह के नेक बंदे, उनके साथ कनेक्ट रहो, उनके साथ जुड़े हुए रहो। ये तीन काम, मकतब मदरसा, दावत व तबलीग की जमात की मुबारक मेहनत, खानका, अल्लाह के नेक बंदों के साथ कॉन्टेक्ट, ये तीन काम करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी और हमारी नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमाएंगे। कुरान में आज जुमा थी, आप सब ने उम्मीद है कि सूरतुल कहफ जरूर पढ़ी होगी। हर जुमा को सूरतुल कहफ पढ़ लिया करो, बहुत सवाब है जुमा के दिन सूरतुल कहफ पढ़ने का। अल्लाह ताला सूरे कहफ की बरकत से एक नूर पैदा फरमाते हैं पैर से लेकर आसमान तक, और वो नूर कयामत के दिन की अंधेरियों में काम आएगा। ऐसा नूर सूरे कहफ पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। सूरे कहफ में आपने एक आयत पढ़ी, वस्बिर नफ्सक मअल्लदीना यदउना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहा वला तअदु ऐनाका अनहुम। अल्लाह ताला सूरतुल कहफ में ऑर्डर देते हैं, ए ईमान वालो, तुम अपनी दोस्ती, अपनी कंपनी, अपना फ्रेंड सर्कल ऐसे लोगों के साथ बनाओ जो सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करते हैं, जो हर वक्त अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह को राजी रख के जिंदगी गुजारते हैं। ऐसे लोगों के साथ तुम्हारा उठना बैठना होना चाहिए, तुम्हारी कंपनी होनी चाहिए, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल ऐसे लोगों के साथ होना चाहिए। तो आज इस जमाने में ये भी बहुत जरूरी है। अच्छे लोग होते, कोई गलत दोस्त मिल गया, गलत फ्रेंड सर्कल में चले गए, तो नमाज भी छूट जाती है, फिर आदमी मस्जिद से दूर हो जाता है, ड्रग्स में पड़ जाता है, आउटलाइन हो जाता है। इसलिए गलत दोस्ती में मत रहो, गलत दोस्तों से अवॉइड करो, दूर रहो, अपने आप को बचा करके रखो। तो ये तीन मुबारक सिलसिले हैं इस जमाने में, इन तीनों के साथ जुड़े रहो तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसकी बरकत से हमारी और हमारे नस्लों की ईमान की हिफाजत फरमाएंगे। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त मुसलमानों को सबसे बड़ी फिक्र ये है कि हमारा और हमारी औलाद का ईमान कैसे बच जाए, कैसे ईमान सलामत रह जाए। इसके लिए ये तीन काम मैंने आपको बतलाए, और साथ साथ में अल्लाह ताला से दुआ भी मांगो। क्या दुआ मांगोगे? कुरान में अल्लाह ताला ने दुआ सिखला दी, रब्बना ला तुज़िग कुलूबना बादा इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ए अल्लाह, आपने हमको ईमान दिया, ए अल्लाह आपने हमको हिदायत दी, अब हमको ईमान की लाइन से आउट लाइन मत कर देना, ईमान की लाइन से आउट मत कर देना, हमको ईमान पे बाकी रखना, हिदायत पर बाकी रखना, और ईमान की हालत में अल्लाह हमें दुनिया से उठाना। ये दुआ अल्लाह ताला से मांगा करो, रब्बना ला तुज़िग कुलूबना बादा इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह ताला मेरी आपकी औलाद और नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमाए। बुजुर्गों, दुनिया जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कयामत के नजदीक होती जा रही है, हम बस अपनी मौत के बाद की जिंदगी की तैयारी करें जो आखिरत में काम आवे। आजकल कितना आसान हो गया, लोग कितनी आसानी के साथ इबादत कर सकते हैं, माशाल्लाह जगह जगह मस्जिद है, मदरसे हैं, रमजान का मुबारक महीना है, और दीन की तालीम है। कितना आसान जमाना अल्लाह ताला ने कर दिया इबादत का, नेकी का। तो हमें मस्जिद से अपना ताल्लुक मजबूत करना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको और पूरी उम्मत को इसकी नेक तौफीक और सआदत अता फरमाए। अपने बच्चों की तालीम और तरबियत की फिक्र करो। और जैसा मैंने आपको कहा, सूरतुल कहफ की शुरू की आयत या अखीर वाली 10 आयत, और अल्लाह हिम्मत देवे तो शुरू और अखीर की 10-10 आयत रोज पढ़ लिया करो। अल्लाह ताला उसकी बरकत से इंशाल्लाह दज्जाल और दज्जाली फितनों से हमारी जरूर हिफाजत करेंगे। पढ़ोगे पाबंदी के साथ? और देखिए, रमजान का मुबारक महीना आ रहा है। एक हदीस मैं आपको सुनाता हूं। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जद्दीदु ईमानकुम, तुम अपने ईमान को नया बनाओ, ईमान को ताजा करो, फ्रेश करो, मजबूत करो। तो सहाबा ने पूछा, कालू कैफ नुजद्दीदु ईमानना, हम हमारे ईमान को कैसे नया और फ्रेश करेंगे? तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सिरु जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, के ला इलाहा इल्लल्लाह बहुत ज्यादा पढ़ो। अल्लाह उसकी बरकत से ईमान को ताजा और पावरफुल बना देंगे। आप सब नियत करो कि इस साल रमजान में 70,000 टाइम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे। पूरी रमजान में 70,000 टाइम। 70,000 इसलिए कि फजाइल जिक्र में हजरत ने एक हदीस नकल की है कि जो मुसलमान 70,000 टाइम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े और किसी को इसाले सवाब कर दे तो अल्लाह ताला मरहूम की मगफिरत फरमा देते हैं। हम अपनी मगफिरत के लिए अपनी जिंदगी में 70,000 टाइम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के अल्लाह की ना रिजर्व करा देवे, जमा करा देवे, तो इंशाल्लाह हमारी मगफिरत पक्की हो जाएगी। इसीलिए नियत कर लो कि इस रमजान में 70,000 टाइम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे। कहो इंशाल्लाह। और एक हदीस सुनाकर अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। आप में से कौन चाहता है कि मौत के बाद डायरेक्ट जन्नत में जावे? जरा उंगली उठाओ। मौत के बाद डायरेक्ट जन्नत सब जाना चाहते हैं, तो प्रॉमिस करो मस्जिद में बैठ करके हदीस पर अमल करेंगे। अब ध्यान से हदीस सुनो। अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान हर नमाज के बाद एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लेवे, अल्लाह ताला उसको मौत के बाद जन्नत अता करेंगे। जो मुसलमान हर नमाज के बाद एक मरतबा क्या पढ़ना है? आयतुल कुर्सी। तो अल्लाह ताला उसको मौत के बाद डायरेक्ट सलामती से जन्नत अता करेंगे। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम से शुरू होगी और वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलीयुल अज़ीम। और बुखारी शरीफ में एक हदीस है कि जो मुसलमान रात को सोते वक्त पर अपने बिस्तर पर बैठ करके आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, अल्लाह ताला की तरफ से एक हिफाजत करने वाला यानी एंजल फरिश्ता आएगा और पूरी रात उसके मकान की सिक्योरिटी करेगा, हिफाजत करेगा। इसलिए रात को सोते वक्त पर भी आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। टोटल 24 घंटे में रात दिन में कम से कम 6 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ो, हर नमाज के बाद एक मरतबा। और हम 5 नमाज पढ़ते, इसलिए 5 नमाज मिला के 5 आयतुल कुर्सी हो गई, और एक रात को सोते वक्त पर। इस हदीस का एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि जो आदमी आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, अल्लाह उसकी और उसके घर बार की हिफाजत करेंगे, तो जन्नत भी मिलेगी और दुनिया में हिफाजत भी मिलेगी। इसीलिए वादा करो कि आज से रोजाना 6 मरतबा आयतुल कुर्सी जरूर पढ़ेंगे। और मौत तक, जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला इस अमल को पाबंदी से करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी इस जमा होने को, कहने सुनने को कबूल फरमाए। दुआ कर लो अल्लाह ताला से, दुआ का तरीका सीख लो। रमजान आ रही है, रमजान में भी आप लोग दुआ करोगे तो दुआ का सही तरीका सीख लो। हदीस में आता है कि दुआ शुरू करने से पहले अल्लाह की हमदो सना करना चाहिए। हमारे यहाँ जनरली क्या होता है कि जब दुआ शुरू होने वाली होती है तो लोग कहते भाई दुरूद शरीफ पढ़ो, दुआ हो रही है। ये आधी बात है, पूरी बात क्या है कि पहले अल्लाह की हमद करो, फिर दुरूद शरीफ करो, फिर दुआ करो। और अल्लाह की हमद कैसे करेंगे? अलहमदो शरीफ की पहली आयत पढ़ लो या सना पढ़ लो नमाज वाली, और उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ करो, और दुआ खत्म करते करते भी दुरूद शरीफ पढ़ो तो इंशाल्लाह अल्लाह के यहाँ दुआ कबूल हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहानक अल्लाहुम्म व बिहम्दिक व तबारक इस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرماؤ، اے اللہ ہم کو وقت پر ایمان پر موت عطا فرماؤ، ہماری قیامت تک آنے والی اولاد کو سچا پکا مسلمان بنا دیجئے، اے اللہ دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرماؤ، اے اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرماؤ، اے اللہ ہم سب کو قرآن کی تعلیم صحیح سیکھنے کی سکھانے کی توفیق عطا فرماؤ، اے اللہ آنے والے رمضان کے تمام روزے وقت پر رکھنا آسان فرماؤ، تراوی میں قرآن سننا آسان فرماؤ، آپ کا ذکر آسان فرماؤ، اے اللہ آنے والے رمضان کو ہماری زندگی میں تقویٰ کے پیدا ہونے کا ذریعہ بناؤ، پوری دنیا کے ایمان والوں پر رحم فرماؤ، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرماؤ، پریشان حال کی پریشانی دور فرماؤ، ہر ایک کو حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ، ہر ایک کو اپنا گھر عطا فرماؤ، جائز مرادیں پوری فرماؤ، زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ۔ پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی، اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ اس مجلس کو قبول فرماؤ، کہنے سننے کو قبول فرماؤ، اپنی رضا کا ذریعہ بناؤ۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔